ಜನ ಬ್ರಜ ಜನ ರಂಜನ
ಅನಂತ ವಿಜಯಂ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಅನಂತ ವಿಜಯಂ अनंत नाम का सुन राजा राजा कुंती पुत्र कुंती के पुत्र युधिष्ठिर युधिष्ठिर नकुल नकुल सहदेव सहदेव ने तथा सुघोष मणि पुष्पकों सुघोष था मणि पुष्पक नामक काश्य काशी वाराणसी के राजा ने तथा परम यीशु आसह महान धनुर्धर शिखंडी शिखंडी ने भी महारथ हजारों से अकेले लड़ने वाले दुष्टद्युम्न दुष्टद्युम्न राजा द्रुपद के पुत्र ने विराट विराट राजा और जिसके पांडवों को उनके अज्ञान वहां से समय शरण दी थी उसने भी सांतिकी सांतिकी युधान श्री कृष्ण के साथी ने तथा अपराजित कभी ना जीता जाने वाला सदा विजयी द्रुपद द्रुपद पंचाल के राजा ने द्रौपदेय द्रौपदी के पुत्रों ने भी सर्वश सभी पृथ्वीपते हे राजा सौभद्र सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु ने भी महाबाहु विशाल उधाओं वाला शंखान शं धुमनो धर्मुह बजाए पृथक पृथक अलग अलग अनुवाद अर्थात कृष्ण प्रभुपाद की तरह प्रभुपाद है अनुवाद हे राजन कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाया महान धनुर्धर काशीराज परम योद्धा शिखंडी दृष्टद्युम्न विराट अजय सत्यकी द्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए ताकरे संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से ये बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने तथा राज्य सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने की ये अविवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं थी। लक्ष्मण से पहले ही ये उसके सूचित हो गया था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। विश्व पितामह से लेकर अन्य पौत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे लोगों का विनाश निश्चित था। ये सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहन दिया था। ओम अज्ञान तमिराम रहस्य ज्ञान दर्शनाज्ञान शिक्षोरुं मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्य मनोविष्णुं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामये ददाति सर्वदर्शिकं वाञ्छाकल्पद्रुभ्यश्च प्रभातं दुभ्येभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर गौरवस्वरिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम शुभाय कृष्ण कृष्ण भूतले श्री हरे आज कल ये जो श्लोक है इसे बहुत सारे नामों का वर्णन आ रहा है ना, कितने सारे नाम। तो कई बार जो है बहुत जब पढ़ते हैं तो उनके मन में आता है ये विचार आता है कि ये सब नामों के बारे में वर्णन करने का अवसर सीधे चुनौती का है ना, है ना भाई क्या भगवत गीता है सीधे सीधे सामने कह रहे हैं कौन क्या सुन बजा रहा बाजा बजा रहा है क्या करेंगे तो पाला ऐसे जाने तो ये कई कई मन में आता है। ऐसे आप भागवत पढ़ेंगे ना उसमें भी जो है कुल परंपराओं की चर्चा हो रही है उसके वो पुत्र थे उसकी वो पुत्र थी उसके इतने पुत्र उनका उससे हुआ हुआ ये हुआ तो कभी भी सोचने आते हैं ये अब यहाँ पर अर्जुन इतने तनाव में है सीधे सीधे बताओ भाई आप टेंशन में हो दवाई दो है ना। अब ये सारा बताना कौन क्या कर रहा है कौन शंख बजा रहा है कौन माउथ ऑर्गन बजा रहा है कौन गिटार बजा रहा है इसको बजाने क्या 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 जरूरत है सीधे बताएं। लेकिन वास्तव में ये जितनी भी चीज़ें होती हैं जो कृष्ण से संबंधित होती हैं वो पूजनीय होती हैं तो ये सब उस गीता की जो लीला है उसमें थे। हाँ, तो इसीलिए जो है ये सब बहुत सौभाग्यशाली लीला, ये कृष्ण से संबंधित है, कृष्ण से संबंधित है, इसलिए इनके द्वारा भी हम कृष्ण का स्मरण कर पाते हैं कि ये उस समय हमें हमें जो कोई था, हमें जो कोई भी नहीं था इस लीला में। लेकिन ये वो सौभाग्यशाली लीला, भले कौरव साइड में हो या पांडव साइड में, लेकिन ये उस वक्त वहां पर थे। उस वक्त भगवान श्री कृष्ण जब ये स्ट्रेस मैनेजमेंट सेमिनार दे रहे थे भगवद गीता का, उस वक्त ये सब वहां पर थे, ये सभी नहीं थे बल्कि देवी देवता भी थे वहां पर। तो ये सब बहुत बहुत सौभाग्यशाली है, क्योंकि कहो ये सब चीजें हमें कृष्ण स्मरण कराती है। जैसे कि एक बार एक गुरुकुल का बच्चा था, जैसे हमारे मायापुर वृंदावन में गुरुकुल है वहां पर, है ना, तो वहां पर गुरुकुल में जो है एक बच्चा, उसने क्या श्री प्रभुपाद जी को लेटर लिखा, तो श्री प्रभुपाद जी को लेटर लिखा उसने कि श्री प्रभुपाद हाँ गुरुकुल में रह रहा हूँ, बहुत कुछ सीख रहा हूँ यहाँ पर, मैंने भूविज्ञान भी सीखा, ज्योग्राफी सीखी, हिस्ट्री सीखी, बहुत कुछ सीख रहा हूँ, अभी भी मैंने अलजेब्रा सीखा है, अलजेब्रा मैंने सीखा 2 + 2 = 4, इतना सब उसको गुरुकुल में बहुत अच्छा लगता है। नहीं समझ आया, मैं धीरे बोलूँ या मेरी आवाज़ नहीं आ रही है, इको बन रही है? ओके, तो ये जो गुरुकुल का बच्चा था इसने प्रभुपाद जी को लेटर लिखा, तो लेटर में लिखा श्री प्रभुपाद गुरुकुल में हूँ, बहुत कुछ सीख रहा हूँ, भूविज्ञान सीख रहा हूँ, गणित सीख रहा हूँ, अभी अभी मैंने गणित में सीखा है 2 + 2 = 4, इसलिए मुझे गुरुकुल में बड़ा अच्छा लग रहा है। आपका पुत्र, और उसने फिर अपना नाम लिख दिया एलेक्स करके, लिख दिया एलेक्स करके नाम का। अब ये कोई कृष्ण कॉन्शियस लेटर नहीं है, सिर्फ ये बताना है ज्योग्राफी सीख रहा है, हिस्ट्री सीख रहा है, मैथमेटिक्स सीख रहा है। लेकिन प्रभुपाद जी ने इस नॉन कृष्ण कॉन्शियस लेटर का जवाब दिया। प्रभुपाद जी कितना पर्सनलिज्म है प्रभुपाद, इसलिए प्रभुपाद ने रिप्लाई किया मुझे बड़ा अच्छा लगा कि तुम गुरुकुल में हो, बड़े खुश हो, मैं भी तुमको एक चीज सिखाता हूँ एज अग्राम। तो प्रभुपाद ने लिखा रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्ण प्लस Anywhere equals Vaikuntha। तो कृष्ण का स्मरण और चाहे कहीं पर भी हो, अगर इस दोनों को आप जोड़ देते हैं तो आप कहां पर हैं? वैकुंठ में। तो रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्ण प्लस एनीवेयर इक्वल वैकुंठ। वैकुंठ मतलब वैकुंठ, वैकुंठ मतलब चिंता। इस संसार में क्या है, ये भी वैकुंठ है, वे टू कुंठ, मतलब कि कुंठा के अंदर जाने का वे है। और भगवान का धाम क्या है? वाय कुंठा, कुंठा के वाय, क्यों क्यों कुंठा क्यों वाय, वैसे मतलब लिटरली नहीं होता विदाउट, यानी बिना बिना कुंठा के, पर अगर इसको एक खासे भी में दें समझने के लिए तो वाय कुंठा। ऐसे संसार क्या है? वे टू कुंठा। तो प्रभुपाद ने समझाया, तो ये जो सारे आते हैं नाम, ये किसी ना किसी तरह से हमें कृष्ण का स्मरण कराते हैं। तो क्या है हम? We are in Vaikuntha, like that। तो उसके बाद यहाँ पर क्या है, सबके शंखनाद की बात हो रही है। तो शंखनाद जैसे तब क्या है, जब कोई पूजा प्रकार होता है, जैसे हमने यहाँ देखते हैं ना पूजा होती है, उसका शंख बजता है। तो जब युद्ध होने वाला है तो क्षत्रिय के लिए जो है ये सब धर्म है, जैसे जब ब्राह्मण का धर्म होता है यज्ञ करना, हवन करना, तो क्षत्रिय का धर्म है कि वो युद्ध करने के लिए जा रहा है। तो इसीलिए है शंखनाद किया जाता है, क्योंकि जो क्षत्रिय जब लड़ने के लिए जाते हैं ना, तो पहले जो ऋषि हुआ करते थे वो राज ऋषि हुआ करते थे। इसे भगवान गीता में आगे जाके बताएंगे, I am the strength of the strong devoid of passion। मतलब कि उस जो शक्तिशाली व्यक्ति की शक्ति ताकत मैं हूं जो कि रजत के प्रभाव से मुक्त। तो पहले ऋषि का वैसे ही हुआ करते थे, क्योंकि वो इसको पूजा समझा करते थे, ये हमारा धर्म है। इसीलिए लड़ाई कर, अभी तो बैटल फील्ड में लड़ाई करेंगे युद्ध क्षेत्र में, लेकिन जब लड़ाई ओवर हो जाएगी ना, अपने अपने कैंप्स में जाएंगे, वही दुश्मन की पार्टी में बैठ के एक दूसरे के साथ खाना खाते थे, डिनर करते थे कि आज तो भाई हाँ खूब जमा के लड़ाई है, आज मजा है। और वही जब वापस बैटल फील्ड में जाएंगे तो लड़ रहे हैं, दूसरे को मार रहे हैं, क्योंकि वो उनका धर्म है। तो इसलिए धार्मिक कार्य करते हुए जो है शंख बजाया जाता है, क्योंकि शंख ध्वनि होती है। जय जगन्नाथपुर में तो ये है, ये आई आराधनी का, इसीलिए है शंख ध्वनि का वर्णन है। लेकिन आप देखिए इससे पहले भी शंख ध्वनि का वर्णन आया है, और वो भी साइड में। लेकिन संजय ने सबका डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया, इस सेशन में जाया उस सेशन में जाया, सबका डिटेल नहीं दिया, चित्र दिया बीच में नाम लग गया, क्योंकि बाकी सबके सपना निरुत्साहित है। क्योंकि इससे पहले जितने भी प्लान बनाए थे पांडवों को हराने के, वो सब निष्फल रहे, विफल हो गए। तो इतना वो ही निराश, उनको देखिए ना, एक बार अटेंड किया होते हैं कोई एंट्रेंस एग्जाम है तो पेपर, फिर फेल हो गया, फिर फेल हो गया, फिर फेल हो गया, फिर फेल हो गया, अल्टीमेटली ना उसको लगता है कि मैं फिर से अपील तो हो रहा हूँ, फेल ही होना चाहता हूँ। तो इतने अटेम्प्ट जो कर चुके थे कॉर्डर साइड वाले, वो अब हार हार के, हार हार के ना अंदर से था चाहे जीतो कि हमने हार नहीं है, तो इतना कोई उत्साह था नहीं। भीष्म पितामह में भी उत्साह नहीं था, वो सिर्फ जो है दुर्योधन को खुश करने के लिए वो क्षण बजा रहे थे, चलो ठीक है तुमको एनकरेज करने के लिए बजा देता हूँ, जिससे उन्होंने बजाया। तो लेकिन उस साइड में ना कोई दमखम नहीं है, लेकिन इस तरफ इसमें इस साइड जो पांडव की साइड है, इसको सब में जोश कि हम लड़ेंगे, हम धन के लिए लड़ेंगे और सबसे महत्वपूर्ण कृष्ण की प्रसन्नता के लिए लड़ेंगे, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए लड़ेंगे, इसलिए उत्साह था। तो ये उत्साह होना बहुत जरूरी है। हम भी तो अपने अंदर एक संघर्ष कर रहे हैं ना, हमारे अंदर भी तो एक राक्षस बैठा है, हमारे अंदर भी तो एक अधार्मिक व्यक्ति बैठा है, एक शैतान बैठा है हमारे अंदर भी, है ना। तो इसके खिलाफ जो है हमें लड़ना है कृष्ण की प्रसन्नता के। तो ये ना एक बॉक्सिंग रिंग की तरह है जिसके अंदर जो है दो प्रतिद्वंदी है, एक तो आत्मा जीव जो भगवान का अंश है, भगवान की तथाशक्ति का अंश है, और एक है उसका पागल मन, उसके कु संस्कार, उसकी बुरी आदतें, उसकी बुरी प्रोपेंसिटी, वो भी आसान है बॉक्सिंग। तो ये दो कॉम्पिटिशन हो रहा है। तो आत्मा जो है और भगवान कृष्ण बॉक्सिंग रिंग के बाहर बैठे मैच देख रहे हैं, हाँ तो मैच देखते हैं आज कौन जीतता है, आज देखें आज कौन जीतने वाला है। लेकिन अंदर तो चाहते हैं कि ना जीव जीते, ये आत्मा जो है ना मेरा अंश, ये जीते और मेरे पास आए, लेकिन मैच देख रहे हैं। तो जीव जानता है कि मुझको ये युद्ध लड़ना है कृष्ण के लिए, कृष्ण इस बॉक्सिंग रिंग के बाहर बैठे मैच देख रहे हैं और मुझसे मैच लड़ना है, मुझको लड़ना है। तो पूरे उत्साह के साथ जो है जीव को लड़ना चाहिए। हमारे अंदर जितनी भी जो जो भ्रांतियाँ हैं, जो कुसिद्धांत है ना, जो रिबेलियस नेचर है, पैशनेट नेचर है, इग्नोरेंट नेचर है, लोअर नेचर है हमारा, वो अक्सर जो कि आत्मा को ढकने का प्रयास करता है, हमें उसके खिलाफ लड़ना है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। जब हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए युद्ध लड़ते हैं ना, तो हम जीतेंगे, अन्यथा नहीं। जब उनकी कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि हम उनकी प्रसन्नता के लिए लड़ रहे हैं, तो जो है वास्तव में उससे विजय प्राप्त कर पाते हैं। जैसे सुग्रीव और बाली के बीच में जब युद्ध हुआ, बाली बहुत शक्तिशाली था, कौन बिल्कुल बराबर नहीं कर सकता था, क्योंकि बाली के पास ये वरदान है कि सामने वाले प्रतिद्वंदी की आधी शक्ति जो है उसमें आ जाएगी, प्लस वो खुद बहुत शक्तिशाली है, कौन लड़ेगा बाली से। तो हर बार जब बाली और सुग्रीव का युद्ध होता था, तो सुग्रीव बहुत बुरी पिटाई करता था। तो ये जो बाली है, ये रिप्रेजेंट करता है इस प्रकार की हमारे अंदर जो अनर्थ भरे हुए हैं, काम क्रोध दो मोह मत्सर के, उस रिबेलियस नेचर के लिए कृष्ण भावना भावित होने से हमें रोकती है। तो इससे जब भी हम लड़ने के लिए जाते हैं ना, हम हारते हैं, क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली है। लेकिन यदि हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए लड़ेंगे ना, और उनकी शरणागत होकर लड़ेंगे, जैसे कि सुग्रीव ने लड़ा कि भगवान के शरणागत, भगवान राम के शरणागत होकर सुग्रीव ने युद्ध लड़ा जब बाली के खिलाफ, तो विजयी, तो विजयी। उसने भी क्या है, जब युद्ध हुआ ना, युद्ध लड़ा सुग्रीव ने, जब वो हारने के सीमा पे आ गए थे ना, तब भगवान ने तीर चलाया। उससे पहले भगवान ने ये नहीं कि युद्ध शुरू हुआ भगवान ने युद्ध तीर चला दिया, भगवान ने बेटा थोड़ा लड़, थोड़ा थोड़ा खेलो कूदो, तब ज्ञान निकली है, हृदय से चित्कार निकली है, भगवान मेरा बुरे हाल हो रहे, मेरी बैंड बज रही है, भगवान आप बचाओ। हाँ, इस प्रकार से जीव भी अपने अंदर के एवल के खिलाफ, जो अपने अंदर के इस दुष्ट प्रकृति के खिलाफ जब वो लड़ता है, तो कृष्ण कब काफी लड़े और भगवान लड़े, भगवान लड़ चुका है, इतने साल हो गए लड़ते लड़ते, मेरे बुरे हाल हो गए भगवान, चिंता नहीं कृपा। तो भगवान के जो है हम प्रसन्नता के लिए जब लड़ते हैं, तो कृपा हमको मिलती है, और उस कृपा से हम देखते हैं, हम अपने दम पे नहीं जी सकते। इसे 18वें अध्याय का 58 श्लोक है ना, वो मेरा फेवरेट श्लोक है, इनफैक्ट वो भगवद गीता का समराइजेशन है, वो मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। 18 चैप्टर का 58 वर्ड, इसमें कि भगवान कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, सुनिए, यदि तुम मुझसे भावनाभावित होगे, लिसनर, तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांग जाओगे। मेरी कृपा से खुद नहीं लांग जाओगे, मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांग जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे, तो मेरी बात और मेरी बात नहीं सुनोगे, यानी भगवद गीता नहीं सुनोगे, तो तुम विनष्ट हो जाओगे। दिस इज द समरी ऑफ भगवद गीता। भाई मेरी बात सुन ली तो मैं मेरी कृपा से तुम्हारे अवरोध नष्ट हो जाएंगे, मेरी बात नहीं सुनोगे, मिथ्या अहंकार वश सारे करोगे, तो और मेरी बात नहीं सुनके नहीं सुनने के कारण तुम विनष्ट हो जाओगे। वेरी सिंपल, भगवद गीता हम सुनेंगे, उसका पालन करेंगे तो हम जिएंगे, अगर नहीं अगर नहीं ऐसा नहीं करेंगे तो हम विनष्ट हो जाएंगे। सिंपल, दिस इज जिप फाइल ऑफ भगवद गीता चैप्टर 18 वर्स नंबर 58, चैप्टर 18 वर्स 58, 58 हम बोलते हैं हिंदी में, 58 57 58 58 55 57 58। तो इस प्रकार से जो है ये युद्ध कर रहे हैं। तो संजय क्या कर रहे हैं, संजय ने इससे पहले कौरवों की पार्टी को इतना डिस्क्राइब नहीं किया, लेकिन पांडवों की पार्टी को खूब डिस्क्राइब कर रहे हैं अच्छे से। तो ये ही साधु का लक्षण होता है। साधु कभी भी ना भौतिक जीवन के बारे में वाहवाही नहीं करेगा, आध्यात्मिक जीवन की वाहवाही करेगा। क्योंकि उसे पता है भौतिक जीवन तो बेकार है। ऐसे एक बार दूसरे प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद जी से कहा, श्री प्रभुपाद आप कहते हो ये भौतिक जीवन इतना कष्टमय है, इतना दुखमय है, इतना काला है, ये है वो है। अब इतना भी दुखमय नहीं जितना कि आप बोलते हो, और जितना आप बताते थे इतना भी दुखमय नहीं, और कोई नहीं कहता इतना दुखमय, सिर्फ आप ही कहते हो, श्री प्रभुपाद आप ही कहते हो। प्रभुपाद जी ने कहा इसका मतलब सिर्फ मैं ही इकलौता बुद्धिमान हूँ, बाकी सब मूर्ख हैं। क्योंकि भौतिक जीवन है, कोई होगा कोई गुड़गांववासी होगा, किंगडम ऑफ डील घूम के आया होगा, थोड़ा मॉल में घूम के आया होगा, सहारा मॉल में, तो पूछा होगा भगवान ये प्रभुपाद जी से पूछा होगा, प्रभुपाद आप कह रहे हो दुख है, कौन से दुख है, घूम के तो अगर दुख है तो प्रभुपाद का आंसर है तू मूर्ख है। आगे जाके दूसरे अध्याय की 11 श्लोक में जैसे भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, प्रज्ञा वादांश भाषण तो बहुत ऐसे जैसे बहुत बड़े पंडित हो लेकिन हो मूर्ख नंबर वन। तो इस प्रकार जो है जो जो भौतिकवादी होते हैं उनको लगता है कि ये तमाम जमा की इंद्र शक्ति के साथ है, ये बहुत अच्छा है, ये एक्सटर्नल रिटर्न। लेकिन साधु कभी भी इनकी तारीफ नहीं करेगी। साधु का एक ही कार्य है काटना, क्या काटना, सजी काटना, राइट, अज्ञान को काटना, माया को काटना, वो ये करते हैं। इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज साहब कहते थे साधु जो है साधुओं की वाणी चक्कू के समान होती है। साधुओं की जो वाणी होती है ना चक्कू के समान होती है। हमारी जो आसक्तियां हैं भौतिक संसार में, हमारे अंदर जो बुरी आदतें हैं, बुरी इंक्लिनेशन हैं, वो क्या है, एक बकरी की तरह है, बकरी की गर्दन की तरह है। तो क्या करना चाहिए, इस बकरी की गर्दन को आगे कर देना चाहिए। हे साधु अपनी वाणी के चक्कू से ना काट दो। तो साधु या भक्तों की जो वाणी है ये वाणी ही हमारी आसक्तियों की बकरी की गर्दन को काटने वाली है। हलाल नहीं झटका, हलाल भी कुछ केसेस में होता है, देखते हैं कि भाई ऐसा बकरी कैसी है, नहीं कुछ आते हैं प्रभु जी हम झटके के लिए तैयार है, बेटा एक ही बारी आ सकती हैं कर प्रभु जी सारे संशय दूर, नष्ट मोहा स्मृति लब्धा, सारे मोह नष्ट हो गया, स्मृति मेरे को आ गई, भगवान ए भगवान थैंक यू वेरी मच, आज हमें डाउट क्लियर कर दिए। लेकिन कभी कभी जो हालात भी बना होता है धीरे धीरे, तो गुरु जन होंगे कहेंगे ठीक है अभी आप वो कर रहे हो ये भी करो, अभी आप उसे गुरु के साथ जुड़े हो, अभी आप बोले मंत्र को कर रहे हो, ओम नमः शिवाय वो अच्छी करो, साथ हरे कृष्ण करो धीरे 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 धीरे। हाँ ऐसे क्या कहीं बोला कि हमें मीट खाने का बड़ा शौक है लेकिन अब हम आते वाला बिजी लगता है तो प्रसाद भी खाने वाला, कोई बात नहीं आप मीट कम करो धीरे 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 इंक्रीज प्रसाद धीरे धीरे, प्रसाद जो होता है एक ओवर पावर है तो वो था हलाल। लेकिन साधुओं की वाणी जो है कभी भी चापलूसी करने के लिए नहीं होती। भक्ति का मना चाह रहे थे एक साधु फ्लैटर्स यू ही इज योर एनिमी, अगर साधु आपकी चापलूसी करे तो आपका दुश्मन है। चापलूसी तो सारी दुनिया भरी हुई है, अरे सब्जियाँ आप बड़े अच्छे हैं जी, बड़े ग्रेट हैं जी, ये हैं जी, वो हैं जी, पूरी दुनिया भरी हुई है चापलूसों को। लेकिन जो भक्त होता है वो कभी चापलूसी नहीं करेगा। और भक्त कभी प्रशंसा भी करता है ना तो एनकरेजिंग होती है, वो आशीर्वाद होता है उसका, क्योंकि आप बड़ी अच्छी सेवा करते हैं, बहुत डेडिकेटेड भी करते हैं, कि आशीर्वाद है। वो सोचती है नहीं नहीं गुरु जी नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, मैं बहुत पतित हूँ। तो उस भक्त का जो है आशीर्वाद समझ के लेना चाहिए, प्रभु जी ऐसा बोल रहे हैं ना, यहाँ ऐसे ऐसे तीन जीवों की बोल रहे हैं, तो ये उनका आशीर्वाद है कि मैं जो है मेरे अंदर ये गुण है कृष्ण की कृपा से, और मैं इस गुण को और बढ़ाऊँ, इसके लिए उन्होंने कृपा दी है मेरे को ये आशीर्वाद के रूप में। तो साधु जो है कभी भी इस प्रकार से प्रशंसा नहीं करेंगे जिससे कि अहंकार बढ़े। साधु का मतलब ही है जो आसक्तियों को काटे, ये ही उसका काम है। साधु का काम जो है डॉक्टर का है। कभी भी क्या है जैसे कि जब मैंने जुड़ते हैं हम और हमें जो है भक्ति क्रियाओं के बारे में ज्यादा नहीं पता, तो हम इसको इतना एप्रिशिएट नहीं कर पाते। जैसे कि एक बार किसी ने पूछा भक्ति सिद्धांत महाराज से कि महाराज ये मतलब लोग अक्सर श्रवण कीर्तन से जुड़ते भी हैं लेकिन इनकी आसक्ति इतनी कटती क्यों नहीं, क्यों मतलब बढ़ते क्यों नहीं, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि पेट में कीड़े हैं, इसलिए जब पेट में कीड़े होते हैं ना तो जो भी नरसिंह खाना लो तो वो कीड़े उसका पोषण खाया जाए, तो ना व्यक्ति के जो है शरीर में ठीक से खून बनता है, ना उसके शरीर में कोई ताकत आती है, दुबला पतला सिकड़ा ही रहता है। हम कोई लोग कहते हैं खाता पीता सवेरे से लगता ही नहीं, लगता जिसको कीड़ों में लग जाता है। तो इसी प्रकार से हमारे अंदर की जो हिपोक्रेसी है उसको जो है सारा खाना मिल जाता है लेकिन व्यक्ति जो है दुबला पतला रहता है इन स्पिरिचुअल लाइफ। तो जो साधु बन आते हैं वो क्या करते हैं, इन कीड़ों को मारने की दवा लेते हैं, बेटा ये गोलियां खाओ, कृष्ण कथा में आया करो, कृष्ण नाम कीर्तन सुना करो, तो तुम्हारा उद्धार होगा। वैसे भौतिक जीवन में क्या है, भौतिक जीवन में होता है डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, शराब पी के कभी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में है ड्रिंक एंड ड्राइव। गोजी क्या बता रहे हो, भगवती का ग्लास है क्या है, पर ड्रिंक क्या, ड्रिंक कृष्ण कथा एंड कृष्ण नाम कीर्तन, यू शुड ड्रिंक, इससे क्या कांत, लेकिन ये ड्रिंकिंग यहाँ से नहीं होती है, ड्रिंकिंग यहाँ से होती है। इससे हमारी सोसाइटी का नाम क्या है, इस्कान, इस्कान इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, कान कान से कान से पीना, ड्रिंक ड्रिंक एंड देन ड्राइव इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, फर्स्ट क्लास गाड़ी चलेगी मक्खन एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दैट्स व्हाई इट इज इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इस कॉन्शियसनेस से कॉन्शियसनेस अच्छी होगी हमारी। तो इसलिए जो है ड्रिंक एंड ड्राइव, लेकिन ड्रिंक एंड ड्राइव कौन कराता है आपको, ड्रिंक कौन कराता है, भक्त कराता है, और भक्त कभी भी जो है भौतिक जीवन के बारे में आपको ड्रिंक नहीं कराएंगे, हमेशा आध्यात्मिक जीवन के बारे में ड्रिंक कराएंगे, एंड ड्रिंक ड्रिंक मोर एंड मोर ड्रिंक एंड ड्राइव। तो यहाँ पर जो धृतराष्ट्र हैं उनके बारे में प्रभुपाद जी प्रोपोर्ट में आपको लिखना है कि धृतराष्ट्र जो है उनकी कुनीतियों के कारण सबको भोगना पड़ा, उन्होंने उनके उन्होंने गलत डिसीजन किए लाइफ में, और उसी वजह से जो है पूरे जो जो साम्राज्य था उसका पतन हुआ। तो धृतराष्ट्र है इज अ लीडरशिप पोजिशन, तो किस प्रकार से समाज में लीडर होने चाहिए और यहाँ किस प्रकार से समाज में लीडर नहीं होने चाहिए, लीडरशिप में क्या क्वालिटी अवॉइड करनी चाहिए, वो धृतराष्ट्र यहाँ पर दिखा रहे हैं। जैसे कि एक क्वालिटी जो धृतराष्ट्र थी वो थी पार्शियलिटी, लीडर शुड बी इम्पार्शियल, लीडर शुड नॉट बी पार्शियल, लेकिन धृतराष्ट्र ने कौन सी क्वालिटी एग्जिबिट की, पार्शियलिटी, कि जो मेरे सगे संबंधी हैं, जो मेरे चाहने वाले हैं, मेरा फैन क्लब है, भले वो सही हो या गलत हो पर वो मेरे साथ है इसलिए। लेकिन लीडरशिप क्योंकि आप आपने से भी दिखाया जाकर वक्त कहीं वक्त आगे बढ़ेंगे है ना, प्रचार करेंगे और जिम्मेदारियाँ आती हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है लीडरशिप में, इम्पार्शियलिटी। तो जितना उसके अंदर एक क्वालिटी नहीं थी, ही वाज पार्शियल टुवर्ड दुर्योधन एंड पार्टी, भले उनको पता था कि दुर्योधन गलत कर रहे हैं, दुर्योधन ने क्या क्या किया हुआ था, लाक्षागृह में आग लगाना, या उसके भीमसेन जी को उन्होंने पॉइजन पिलाया, बहुत कुछ किया उन्होंने, ये सब उनको पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया बिकॉज ही वाज पार्शियल। तो लीडरशिप में ये क्वालिटी जो है बहुत नेगेटिव क्वालिटी है पार्शियलिटी की, और लीडरशिप की इम्पार्शियल, इस तरह से जो है सबका पेट पड़ता है। और समाज में जो है हमें इसी तरह की लीडरशिप क्वालिटी थी, जो राजनीतिज्ञ हैं जो जो कि सीनियर पोस्ट में हैं, तो चाहे आध्यात्मिक संस्था हो या भौतिक संस्था हो, वहां पर लीडरशिप में एक क्वालिटी मस्ट है, इम्पार्शियल। दूसरी एक और क्वालिटी जो यहाँ पर एग्जीबिट होती है धृतराष्ट्र की, वो क्या थी? वो ये थी कि अपने स्वार्थ को त्यागना चाहिए। तो जब तक लीडर सेल्फलेस नहीं है, निस्वार्थ नहीं है, तब तक वो लीडरशिप को निभा नहीं सकता। निस्वार्थता होना बहुत 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 जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब व्यक्ति निस्वार्थ होता है ना, तो उसके प्रति क्या है, सबकी श्रद्धा बढ़ती है। क्योंकि निस्वार्थता जो है वो विरक्ति से आती है। जो जिसमें आसक्ति है ना, वो कभी भी जो है निस्वार्थ नहीं होता, वो हमेशा बायस रहेगा, हमेशा उसकी जो है अपने चॉइसेस रहेंगी। He will be passionate towards certain things. He will be choosing for his own comfort. अपने अपनी सुख सुविधाओं के लिए। इससे ऐसा व्यक्ति जो है लीडर नहीं बन सकता। तो निस्वार्थता होना और निष्पक्ष होना, ये दो क्वालिटीज हैं जो कि एक लीडर में होनी चाहिए, लेकिन धृतराष्ट्र जी ने एग्जिबिट नहीं है, जो कि करनी चाहिए। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर सबके बारे में जो है दृष्टांत आता है। और यहाँ पर जो अलग अलग जो उनके शंख हैं, अनंत विजय, जैसे कि शंख का नाम है विदिष्णु महाराज का, तो अनंत विजय मतलब कि उनकी विजय अब अनंत है, उनकी विजय ही विजय होनी है। और अनंत एक और किनका नाम है, भगवान श्री कृष्ण का नाम है ना। तो उन्होंने अपने स्नेह से, अपने प्रेम से भगवान कृष्ण को भी जीता है, अनंत विजय, अनंत के ऊपर भी विजय प्राप्त की है, वो है महाराज विदिष्णु। तो इसलिए उनका शंख का नाम है अनंत विजय। इसी प्रकार से सहदेव का नाम, जो शंख का नाम था मणिपुष्पक, अर्थात उनकी सुंदरता उस मणि के समान थी जो कि पुष्प की तरह खुला खिला हुआ। एक मणि होते हैं ना जो कि अंगूठे में मिलते हैं, वो स्फेरिकल होते हैं या क्यूबॉइडल होते हैं, है ना, या फिर कोनिकल होते हैं, लेकिन ये ना पुष्प के समान अगर जो मणि हो तो कितना सुंदर लगेगा। तो वैसे ही सुंदर थे सहदेव, जिससे उनके जो शंख का नाम है वो था मणिपुष्पक। और सुघोष जो है वो शंख का नाम था सहदेव, उनका नकुल, क्योंकि नकुल ही बहुत बहुत सुंदर थे। तो सुघोष का मतलब ये जो बहुत सुंदर है और रूप वाले हैं, सुंदर जिनकी आवाज़ है, सुंदर आवाज, तो उनके जो शंख है उसकी आवाज़ बहुत बहुत मधुर थी, इसलिए उनके शंख का नाम है सुघोष। तो सब ने यहाँ पर इंडिविजुअली जो है ये शंख बजाया, और जब इनके शंख बजे ना तो कौरव पार्टी के हृदय दहल गए। जब उस साइड से ऐसा हुआ था तो इतना खुशी हुआ था पांडव साइड में, कौरव ने भी शंख बजाया थे इससे पहले, लेकिन इस साइड जो धुआं नहीं, लेकिन पांडवों ने जब शंख बजाया तो वहां पर हलचल मच गई थी। तो ऐसा ही हाल हमारे अनंतों का होना चाहिए जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। अनंतों लगना चाहिए, अरे बाप रे, ओए ये क्यों बोल रहा है, ये इतने ध्यान गुरु की कैसे जब कर रहा है, क्या निकल रही इसकी पूजे वाणी है, इतने इतने जन्मों से इसकी इसने गुलामी की हमारी, अभी ये इसी किसी चीज की शरण ले ली कुछ हरे कृष्ण करके। अभी तो अभी हमारे अंदर ये जो कल, ये हम जो कलमश हैं जो बैठे हुए थे हृदय में, अब तो भूल जाएंगे। तो ये जो है इस प्रकार से हमारे जो अंदर के हृदय में जो अनर्थ हैं वो भी जो है उन्हें इस प्रकार से थरथराहट होनी चाहिए कि अरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, फॉल डाउन। इससे पहले कि वो हमारा फॉल डाउन करें, वो फॉलो उनका होगा भाई हरि नाम, भाई द होली नेम ऑफ कृष्ण। तो उसके बाद इस प्रकार से जो है हम ये देखते हैं कि इस प्रकार से जो जो पांडव हैं वो लड़ रहे हैं कुरुक्षेत्र में। और यहाँ पर जैसे जन्माष्टमी की भी है सेवा होगी, कौन सुख में जाते हैं, तो यहाँ पर भी क्या है, अभी उसी प्रकार की सेवा करते हैं कि जो वास्तव में सारा साम्राज्य है वो वास्तव में कृष्ण का है। तो पांडव लड़ रहे हैं किसके लिए, कृष्ण के लिए। उसी प्रकार से आपका भक्त भी यहाँ सेवाओं में लगते हैं, जन्माष्टमी सेवा में लगते हैं, जैसे कि है ना बड़े बड़े प्रोग्राम आप ऑर्गेनाइज करते हैं, क्योंकि क्या है कलयुग मीन्स शो ऑफ, है ना। वैसे तो यहाँ जो है जो मटेरियल वर्ल्ड है उसमें क्या है, ऑल ब्लफ नो स्टफ, लेकिन भक्ति क्या है, ऑल स्टफ नो ब्लफ। लेकिन हमें अपने ऑल स्टफ नो ब्लफ को दिखाने के लिए हमें भी वो प्रोग्राम करने होंगे जो कि भौतिकवादी करते हैं, वो भी तो कितने कमर्शियल दिखाते हैं, यहाँ पोस्टर ये पोस्टर ये पोस्टर, है ना, कमर्शलाइजेशन दे डू इट। तो हमको भी स्पिरिचुअल कमर्शलाइजेशन करना है। ये तो जैसे किसी ने पूछा था स्वामी जी आपने ये कृष्ण कॉन्शियसनेस कितना कमर्शलाइजेशन कर दिया आप लोगों ने, ये एक आध्यात्मिक एक कार्य है, कितना कमर्शलाइजेशन कर दिया आपने। प्रभुपाद ने कहा यस वी आर डन कमर्शलाइजेशन, सो यू टेक अ प्रोडक्ट, व्हाई डू यू टेक इट,
अब ये फिलिप्स वाले, सोनी वाले, रीबॉक वाले, ये तो करते कमर्शलाइजेशन, इनके प्रोडक्ट फेयर करते ना सब। हमारा प्रोडक्ट है कृष्णा कॉन्शियसनेस, वी आर डूइंग कमर्शलाइजेशन, यू टेक, व्हाई डोंट यू टेक? तो हमको भी कमर्शलाइजेशन करना है, स्पिरिचुअल कमर्शलाइजेशन। तो इसमें इसमें भक्त हैं, कई तरह से भाग लेते हैं, फंड रेजिंग में भाग लेते हैं, है ना। तो जो लक्ष्मी, जो सीता सबके पास है, रावणों के पास, उनको वापस भगवान राम की सेवा में लेके आना, हनुमान जी की सेवा है, हनुमान जी की तरह की सेवा है। सीता मैया जो लक्ष्मी है वो जो है भौतिकवादी के पास है, उनको भगवान राम के पास, जगन्नाथ जी के पास वापस लेके आना। तो ये जो है फंड रेजिंग की सेवा में इस तरह से भक्त लोग लगते हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने जॉर्ज हैरिसन को बहुत एनकरेज किया, जब उन्होंने जो है जब कृष्णा बुक लिए पैसे दिए थे, यहाँ गर्ग मुनि प्रभु थे वो बहुत फंड रेजिंग करते थे, तो प्रभुपाद जी उनका नाम था गर्ग मनी, गर्ग मनी बहुत पैसे लेके आते हैं, अब मैं अकाउंट में हिसाब से बहुत पक्के हैं गर्ग मनी। तो ऑफकोर्स ये फंड रेजिंग जो है इस तरह से करेंगे तो आप बहुत ही ऑपुलेंट जो है यहाँ पर आप सेवा कर सकते हैं। लेकिन ऑफकोर्स मैं इसके लिए जरूर कहूँगा, ये सेवा ऐसी है जिसमें कि ना रजोगुण में प्रवेश करना कर जाना बड़ा आसान है, तो उस प्रकार की सेवा हमको नहीं करनी। हमारे लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है हमारी कृष्ण भावना, उसको डाइल्यूट करके उसका कचूमर निकाल के हमको बड़े बड़े फेस्टिवल नहीं करने हैं। अपने कृष्ण भावना को रखते हुए जितनी लक्ष्मी आकर्षण कराएंगे विद ऑल योर सिंसियर एफर्ट, उतने में ही हम जमाशी फेस्टिवल करेंगे। अगर 100 वॉट के बल्ब जलाकर अगर हम ज़्यादा ओपनेस करते हैं लेकिन उससे करने में हम भक्तों की भक्ति कम होती है उसमें, तो हम 25 वॉट के बल्ब जला के जन्माष्टमी करने के लिए खुश हैं, वी आर हैप्पी विद दैट। तो जो भक्त इस सेवा में रहते हैं तो अपनी कृष्ण कॉन्शियसनेस को डाइल्यूट ना करते हुए और फिर पूरा प्रयास करते हुए फंडरेजिंग करेंगे, दैट इज गुड, दैट इज बेस्ट, दैट इज बेस्ट। तो इस तरह से देन यू विल एक्सपैंड विद सक्सेस। उस तरह से क्या है, और बताओ, हम लोगों को फंड रेजिंग के बजाय फ्रेंड रेजिंग पे काम करना चाहिए। जब हम फ्रेंड रेजिंग पे काम करेंगे ना, फंड रेजिंग अपने आप होती है। वी शुड वर्क ऑन फ्रेंड रेजिंग, किस प्रकार से हम जो है कृष्ण के जो भक्त हैं उनके सखा बने, सब दोस्त बने, फंड रेजिंग भी ऑटोमेटिक। और क्या है, आपको हर साल फंड रेजिंग को निकल जाएगी। इफ यू डू फ्रेंड रेजिंग भाग लीजिए। मुझे मैनेजर ने बोला था कि आप इस बारे में थोड़ा सा बोलेगा, भक्तों से रिक्वेस्ट करेगा, मेरी रिक्वेस्ट आ सकते हैं इस जन्माष्टमी सेवा में जो भी आपकी अप्रोप्रिएट सेवा हो उसमें भाग लीजिए और अपनी कृष्ण भावना को और गहरा बनाइए और सामने चलिए। इस प्रकार की हम सेवा करेंगे तो आपको ये सेवाएँ जो है सफल होंगी और भगवान जगन्नाथ जी को, बलदेव सुभद्रा जी को, गौर साहब जी को बहुत बहुत पसंद आएंगी, प्रभुपाद जी को बहुत बहुत पसंद आएंगी। तो हमें इस प्रकार से मिलजुल कर आपस में ये जो है इन सेवाओं का विस्तार हमें करना है। जय जगन्नाथ बलि सुब्रमण्यम की जय। तो मैं यहीं पर रुकूंगा, तो 5 मिनट हैं, किसी को कोई प्रश्न उत्तर है, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल किसी का? कोई सवाल नहीं, मेरे प्रवचन की स्पीड ज्यादा थी। ओके, आई एम सॉरी फॉर दैट। युद्ध में शंख ही क्यों बजाते हैं, गिटार पियानो वगैरह क्यों नहीं बजाते? क्योंकि शास्त्र में ऐसा कहा गया है तो हम उसको एज इट फॉलो करते हैं। मौसम की जो ध्वनि है ये बहुत ही ऑस्पिशियस मानी गई है, तो इससे क्या है, जितना भी अशुभ है वो दूर।